بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ ہود کی 45ویں, 46ویں اور 47ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں. تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری میر زادہ واقفی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا, ہے رب, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے. کہا, ہے نوح, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, وہ تو اششٹ کرم ہے, تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اجانی لوگوں میں سے نہ ہو جا. کہا, ہے رب, میں تیری پناہ مانگتا ہوں, इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूं जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
ये रेडियो तेहरान की, क्षमा कीजिएगा, ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, मई की 18, उर्दी बहिश्त की 28 और शव्वाल की 27 तारीख। कार्यक्रमों में पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी। राजनीतिक चर्चा के उपरांत कार्यक्रम होगा आज की बात। सभा के अंत में हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, सफल महिलाएं। दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रईस ने बलूचिस्तान प्रांत में सीमावर्ती मंडी का उद्घाटन किया। फिलिस्तीनियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसराइली हमले न रुकने की स्थिति में मिसाइलों की वर्षा होने लगेगी। यूक्रेन की राजधानी पर हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। अमेरिका का कहना है कि परमाणु बम गिराने के कारण जापान से माफी नहीं मांगेंगे। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र में मुलाकात की है। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि संयुक्त सीमा पर मौजूद मंडियों की मौजूदगी ईरान तथा पाकिस्तान के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सैयद इब्राहिम रईसी ने गुरुवार को ईरान और पाकिस्तान की संयुक्त सीमा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ सीमावर्ती मंडियों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार, उद्योग और खेतीबाड़ी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत किया जा सकता है। राष्ट्रपति रईसी ने गुरुवार को पीशीनमंद मंडी का उद्घाटन किया।
ईरान के पेट्रोलियम मंत्री जवाब औजी ने बताया कि ईरान और रूस के बीच सहमति बन गई है कि कुछ ही महीनों के भीतर 40 अरब डॉलर के समझौते किए जाएंगे। B2B सम्मेलन आगे दोनों देशों के संयुक्त आर्थिक सहयोग कमीशन के प्रमुखों की बैठक के समापन पर पत्रकारों से बातचीत में ईरान के पेट्रोलियम मंत्री का कहना था कि बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है कि ईरान की 27वीं इंटरनेशनल ऑयल एग्जीबिशन में रूस के उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया।
इसराइली सैनिकों ने वेस्ट बैंक के नाबलूस नगर में ऑपरेशन शुरू किया है। उन्होंने पुराने नाबलूस के इलाके के एक भाग को घेर लिया, जिसके दौरान फिलिस्तीनियों से उनकी झड़पें भी हुईं। दूसरी ओर बैतुल मुकद्दस में इसराइल ने भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। फिलिस्तीनी जवानों को मस्जिद अल अक्सा से वे जाने से रोक रहे हैं। गुरुवार को चरमपंथी यहूदी फ्लैग डे मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए टकराव की संभावना पाई जाती है।
फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं ने जानी शासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमले न रुकने की स्थिति में मिसाइलों की बारिश होने लगेगी। फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता कहते हैं कि मस्जिदुल अक्सा और फिलिस्तीनियों के विरुद्ध यदि जानी शासन की उकसावे वाली कार्रवाइयां जारी रहती है तो फिर इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे में इसराइल को मिसाइलों की वर्षा देखने को मिलेगी। गुरुवार को चरमपंथी यहूदी फ्लैग डे मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए टकराव की संभावना है। इस दौरान जायनियों के उकसावे वाली कार्रवाइयां करते हुए देखा गया। फ्लैग डे के दौरान हर साल जायनी बैतुल मुकद्दस के पुराने मोहल्लों से निकलकर मस्जिद अल अक्सा के आंगन में पहुंचते हैं।
यूक्रेन की राजधानी और दूसरे शहरों में गुरुवार तड़के अफरा तफरी मच गई, उस समय के जब रूसी मिसाइलों की बारिश होने लगी। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि कैस्पियन सागर से भीतर से रूसी युद्धपोतों के क्रूज मिसाइल फायर किए गए। यूक्रेन की सेना ने एक बयान में कहा है कि नगरवासियों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा ठिकानों में शरण लें। कीव पर कई मिसाइल हमले हुए और हमले के दौरान अलग अलग जगहों पर मलबे गिरे और आग लग गई। कीव के मेयर का कहना है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगी हुई है।
चीन ने विदेशी दूतावासों से मांग की है कि वे इस देश में यूक्रेन के लिए किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा न करें। बीजिंग में मौजूद कई देशों के दूतावासों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन के समर्थन में अपने यहाँ झंडे, प्लेकार्ड और पोस्टर लगाए हैं। ये काम उन्होंने अपनी इमारतों के बाहरी हिस्से पर किया है। इस काम पर चीन ने नाराजगी जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बिन ने बुधवार को कहा है कि बीजिंग में उपस्थित सभी विदेशी दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को सचेत किया जाता है कि यूक्रेन के समर्थन में वे किसी भी प्रकार का प्रचार करने से बचें।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द कर दिया है। इसकी वजह से सिडनी में होने वाली महत्वपूर्ण क्वाड बैठक भी रद्द करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि क्वाड की बैठक रद्द कर दी गई है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द हो गया है। बाइडेन ने अपना दौरा अमेरिका में चल रहे आर्थिक संकट को देखते हुए रद्द किया है। क्वाड बैठक को बिल्कुल आखिरी क्षणों में रद्द कर दिया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की देर रात तक उम्मीद थी। भारत, जापान के नेताओं और अमरीका के प्रतिनिधि के साथ क्वाड की ये बैठक होगी, लेकिन फिर बुधवार सुबह अल्बीज ने ऐलान किया कि क्वाड की बैठक रद्द की जा रही है।
अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जापानी नगरों पर उसके द्वारा किए गए परमाणु बम हमलों पर माफी नहीं मांगी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि 1945 में जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर की जाने वाली परमाणु बमबारी के संबंध में जापान से क्षमा नहीं मांगेंगे। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। अमेरिका की इस अमानवीय कार्रवाई में 140,000 लोग मारे गए और हिरोशिमा नगर को बहुत क्षति पहुंची। इस घटना के 3 दिनों के बाद अमेरिका ने जापान के दूसरे नगर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 70,000 जाने चली गईं। बताया जाता है कि हिरोशिमा पर अमरीका ने जो परमाणु बम गिराया था वो 15,000 TNT था। जिस समय ये बम वहां पर गिरा था उस समय उस क्षेत्र का तापमान बढ़कर 4,000 डिग्री हो गया था।
इमरान खान ने कहा है कि उनके घर को पूरी तरह से घेर लिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने बुधवार की रात ये कहा कि देश के सुरक्षा बलों ने उनके घर को गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि लाहौर में इमरान खान के घर की ओर जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। इमरान खान के निवास स्थल जमान पार्क के बाहर का माहौल वैसे तो शांतिपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा गया है कि उस ओर जाने वाले सारे मार्गों को बंद कर दिया गया।
पाकिस्तान में 9 मई को होने वाले हंगामों का मुद्दा लगातार गर्माया हुआ है और सेना प्रमुख ने कहा है कि इन दुखद घटनाओं को दोहराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हाल ही में एक योजना के साथ पेश आने वाली दुखद घटनाओं को दोहराने की किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जाएगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि 9 मई के काले दिन जनता का अपमान करने वाले सभी दोषियों को हर हालत में इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि सूडान बहुत तेजी से एक त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। अलकुद्स अल अरबी समाचार पत्र के अनुसार सूडान की वर्तमान स्थिति के बारे में राष्ट्र संघ ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि सूडान की आबादी के आधे से अधिक लोगों को इस समय मानवीय सहायता की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सूडान के लिए फिलहाल $3 अरब का प्रबंध करना होगा। इस बयान में ये भी कहा गया है कि ये देश एक क्षेत्रीय संकट की भूमिका बन चुका है। सूडान से पलायन करने वालों की संख्या 10 लाख हो चुकी है। याद रहे कि सूडान में पिछले एक महीने के दौरान होने वाली झड़पों में 750 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसी के साथ विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने बुधवार की सुबह हज संस्था के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और हज के लिए रवाना होने वाले कुछ हाजियों से मुलाकात में हज के राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों पर रोशनी डाली। सऊदी अधिकारियों ने तेहरान के साथ रियाज के रिश्तों की बहाली पर पुनर्विचार करने के वाशिंगटन के अनुरोध को ठुकराते हुए कहा है कि इसमें जो भी कदम उठाए गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। भारत के कर्नाटक राज्य में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस तो जीत गई थी, परंतु कई दिनों में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। किंतु अब इस संबंध में लगाई जाने वाली अटकलों पर विराम लग गया है और सीतारामैया राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने बुधवार की सुबह हज संस्था के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और हज के लिए रवाना होने वाले कुछ हाजियों से मुलाकात में हज के राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों पर रोशनी डाली। हज एक इस्लामी वाजिब फरीजा है जिसके धार्मिक आयामों के साथ ही बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक आयाम भी हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के संबोधन में हज के कुछ राजनीतिक आयामों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। समीक्षा पेश करें साथ ही अहमद अब्बास।
इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह उज़्मा खामनेई ने बुधवार की सुबह हज संस्था के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और हज के लिए रवाना होने वाले कुछ हाजियों से मुलाकात में हज के राजनीतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक आयामों पर रोशनी डाली। हज एक इस्लामी वाजिब फरीजा है जिसके धार्मिक आयामों के साथ ही बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक आयाम भी हैं। आयतुल्लाह उज़्मा खामनेई के संबोधन में हज के कुछ राजनीतिक आयामों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। सबसे पहला आयाम यह है कि हज मुस्लिम राष्ट्रों को एक दूसरे के करीब लाता है। पश्चिमी ताकतों का एक बड़ा हथकंडा इस्लामी जगत में अलग अलग देशों के भीतर विवाद और फूट डालना रहा है। हज में चूंकि अलग अलग देशों से लोग सऊदी अरब में जमा होते हैं, तो ये एक दूसरे से संवाद और एक दूसरे के बारे में सही सोच कायम करने और पश्चिमी देशों की विभाजनकारी साजिशों को नाकाम बनाने का बड़ा अच्छा अवसर होता है। इस्लामी क्रांति के नेता ने इसी संदर्भ में कहा कि हज एक वैश्विक व सिविलाइजेशनल विषय है जिसका लक्ष्य इस्लामी जगत का उत्थान करना اور مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور کفر، ظلم، سامراجیواد اور انسانی و غیر انسانی بتوں کے مقابلے میں اسلامی دنیا کو ایک جٹ کرنا ہے۔ اسلامی انقلاب کے نیتا کے انوسار حج کا دوسرا راجنیتک آیام اسلام میں مانوادھیکار کے بارے میں اتینت وکست سوچ کا پریچے کرانا ہے۔ پشمی دیش ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں مانوادھیکاروں کی بڑی چنتا ہے، مگر دوسری اور انے دیشوں وشیش روپ سے اسلامی دیشوں کے مانوادھیکاروں کا کھل کر ہنن کرتے ہیں۔ پشمی دیش حج کو بھی مہتوہین سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ ایک طرف یمن میں مانوادھیکاروں کے ہنن کا سمرتھن کرتے ہیں تو دوسری طرف یوکرین کے معاملے میں مانوادھیکار کے مدعے کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ حج کا موقع بہت اچھا اوسر ہوتا ہے کہ ان جھوٹے دعووں کی حقیقت سامنے لائی جائے۔ حج میں رنگ، نسل، ورگ اور بھوگولک استھتی کسی بھی چیز کے آدھار پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ اسلامی کرانتی کے نیتا کا کہنا تھا کہ اسلام نے عملی طور پر سمانتا کی تصویر پیش کی ہے، جس میں نسلی، بھوگولک یا ورگیہ کسی بھی طرح کے بھید بھاؤ کی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ پشچم اب بھی یورپین نسل اور غیر یورپین نسل کے بھید بھاؤ کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ آیت اللہ خامنے کا کہنا تھا کہ پشمی دیشوں میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے پالتو جانوروں کو کچھ انسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے شرارتیوں کو سمندر میں ڈوبنے دیتے ہیں، انہیں اس پر کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ حج کا تیسرا راجنیتک آیام فلسطین کا سمرتھن اور زائنی شاسن سے بیزاری کا اعلان ہے۔ حج کا موسم ایک ایسا موسم ہوتا ہے جس میں مسلمان اکترت ہوتے ہیں اور فلسطین کے سمرتھن اور زائنی شاسن کی نندا میں نعرے لگاتے ہیں۔ اس موقع پر مسلمان سامراجیواد کے ورودھ کا بھی اعلان کرتے ہیں، اسی لیے اسلامی کرانتی کے نیتا کا کہنا تھا کہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنا حج کا ایک لکش ہے۔ آخری بندو یہ کہ حج کی انہی وشیشتاؤں کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل حج کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتے اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حج کے کچھ سماروہوں کو رکوائیں، اور اس کے لیے وہ سعودی عرب پر دباؤ ڈالتے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کارکرم راجنیتک چرچا۔
سعودی ادھیکاریوں نے تہران کے ساتھ ریاض کے رشتوں کی بحالی پر پنر وچار کرنے کے واشنگٹن کے انوروھ کو ٹھکراتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں جو بھی قدم اٹھائے گئے ہیں انہیں واپس نہیں لیا جا سکتا۔ غور طلب ہے کہ ایران اور سعودی عرب نے اپنے مدبھیدوں کا سمادھان نکالتے ہوئے مارچ کے مہینے میں چین کی مدھیستا میں رشتوں کی بحالی کے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے، جس کے بعد دونوں دیش ایک دوسرے کے یہاں اپنے دوتاواز بھی کھول رہے ہیں۔ مدھیہ پور کے دو مہتوپورن مسلم دیشوں کے بیچ رشتوں کی بحالی امریکہ اور زائنی شاسن کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ساتھ ہی میسم عباس،
سعودی ادھیکاریوں نے تہران کے ساتھ ریاض کے رشتوں کی بحالی پر پنروچار کرنے کے واشنگٹن کے انوروھ کو ٹھکراتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں جو بھی قدم اٹھائے گئے ہیں انہیں واپس نہیں لیا جا سکتا۔ غورطلب ہے کہ ایران اور سعودی عرب نے اپنے مدبھیدوں کا سمادھان نکالتے ہوئے مارچ کے مہینے میں چین کی مدھیستا میں رشتوں کی بحالی کے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے، جس کے بعد دونوں دیش ایک دوسرے کے یہاں اپنے دوتاواز بھی کھول رہے ہیں۔ مدھیہ پور کے دو مہتوپورن مسلم دیشوں کے بیچ رشتوں کی بحالی امریکہ اور زائنی شاسن کو کچھ پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کے مدبھیدوں سے سب سے زیادہ فائدہ بھی انہیں ہی ہو رہا تھا۔ امریکہ کو یہ بات اس لیے بھی زیادہ کھل گئی کیونکہ اس سمجھوتے پر بیجنگ میں اور چین کی مدھیستا میں ہستاکشر ہوئے۔ دوسرے وشو یدھ کے بعد سے امریکہ خود کو مدھیہ پور میں ہر سیاہ اور سفید کا مالک سمجھتا تھا، خاص طور پر فارس کی کھاڑی کے عرب دیشوں پر اس نے پورن روپ سے اپنا نینترن جما رکھا تھا، لیکن اس کھیتر میں پچھلے دو دشکوں کے دوران امریکہ نے جتنے بھی یدھ شروع کیے اس میں سے اسے کسی بھی یدھ میں جیت حاصل نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کھیتر پر اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی بلکہ وشو میں بھی اس کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ حالانکہ امریکہ اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے سعودی عرب पर ईरान के साथ संबंधों की बहाली नहीं करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सऊदी नेतृत्व बदलते हुए वैश्विक समीकरणों में हारे हुए घोड़े पर बाजी नहीं लगाना चाहता है, इसलिए उसने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया है। दरअसल इस क्षेत्र में अमरीका सिर्फ अपने ही हितों की रक्षा की चिंता नहीं करता, बल्कि उसे ज़ायोनी शासन की रक्षा की अधिक चिंता है, जिसके लिए वो खुद को प्रतिबद्ध मानता आया है। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों के साथ ज़ायोनी शासन के संबंधों के सामान्यकरण के लिए बहुत प्रयास किए थे और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहे थे। वाशिंगटन का प्रयास था कि सबसे बड़े अरब देश के रूप में सऊदी अरब के साथ अगर इसराइल के संबंध सामान्य हो जाते हैं तो ज़ायोनी शासन को इस क्षेत्र में किसी हद तक राहत मिल जाएगी और ज़ायोनी चैन की सांस ले सकेंगे, लेकिन सब कुछ वाशिंगटन की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ और अब न सिर्फ सऊदी अरब ने इसराइल से दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है, बल्कि उसके दूसरे सहयोगी अरब देशों ने भी ज़ायोनी शासन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। हालांकि ईरान ने अपनी विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं किया है और वह आज भी पहले की तरह इसराइल के खिलाफ प्रतिरोधी मोर्चे का खुलकर समर्थन कर रहा है और करता रहेगा।
भारत के कर्नाटक राज्य में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस तो जीत गई थी, परंतु कई दिनों में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किंतु अब इस संबंध में लगाई जाने वाली अटकलों पर विराम लग गया है और सीतारामैया राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि शिवकुमार राज्य के उप मुख्यमंत्री बनेंगे।
भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी से चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि सिद्धारमैया को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि डी के शिव कुमार कर्नाटक के इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिव कुमार आगामी संसदीय चुनाव के अंत तक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। उनके अनुसार 20 मई को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उसी दिन शपथ ग्रहण करेगा। वेणुगोपाल ने कहा कि सिद्धारमैया और शिव कुमार की अंतक कोशिशों से कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली है, जो कर्नाटक और देश की जनता की कामयाबी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार की प्रशंसा की। इस घोषणा से पहले कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट की थी। मुख्यमंत्री पद की घोषणा के बाद जहां डी के शिव कुमार के समर्थक उदास हो गए हैं, वहीं सिद्धारमैया के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने सिद्धारमैया के आवास के बाहर जश्न मनाया। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने और कांग्रेस की प्रचंड जीत के बावजूद कई दिनों तक यह स्पष्ट नहीं था कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों ही इस पद के दावेदार थे। इस मुद्दे को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए बेंगलुरु और नई दिल्ली में मंथन होता रहा, जिसके बाद आखिरकार शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने और अगले लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभालने को तैयार हो गए।
हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण है और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है, इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे।
बताया जाता है कि उम्र में कम होने और कांग्रेस को चुनाव में जिताने के लिए भरपूर प्रयास करने के बावजूद डी के शिव कुमार सिद्धारमैया से इसलिए पिछड़ गए क्योंकि 135 नव निर्वाचित विधायकों में से अधिकतर विधायकों ने खुलकर सिद्धारमैया का समर्थन किया था, यानी वे सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, लेकिन सरकार विरोधी लहर के आगे भाजपा अपनी सरकार नहीं बचा सकी और इस प्रकार दक्षिण भारत में उसकी एकमात्र सरकार चली गई। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोताओ, शमशाद काजमी की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. دوستو آپ نے راجنیتک چرچا سنی. اب پیش ہے کاریکرم آج کی بات.
آج کی بات.
شروتاؤں آپ کا سواگت ہے کارکرم آج کی بات میں. میں ہوں احمد عباس. کارکرم میں ہم بات کریں گے بھارت کے ساماجک ماحول کی. بھارت میں کرناٹک راجیہ کے ودھان سبھا چناؤں کے پریڑام آ گئے, جس میں کانگریس پارٹی کو جیت ملی اور بھارتی جنتا پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. تو چناوی بحثوں سے اتر سماجک بحث بھی زور پکڑ گئی. بھارتی جنتا پارٹی اور اس کے ماتری سنگٹھن آر ایس ایس کے بارے میں یہ بحث بھارت ہی نہیں بلکہ وشو استر پر ہے کہ وہ بھارت کے سماج کو دھرم نرپیکش سماج سے بدل کر کٹر پنتھی ہندو سماج بنا دینا چاہتے ہیں, اور یہ کہ ان کی نیتیوں سے بھارت کی دھرم نرپیکشتا اور بھارت کے سمویدھان کو خطرہ ہے. اس طرح کے وچاروں کے سامنے آنے کی معقول وجہیں ہیں. بھاجپا نیتا سامپردائک بیان بازی سے کبھی گریز نہیں کرتے اور دھارمک مدوں کو ہمیشہ چناوی مدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ سموہ میں پردھان منتری پد جیسے بےحد مہتوپورن سمویدھانک پد پر بیٹھے نریندر مودی بھی شامل ہیں.
بجرنگ بلی کی, بجرنگ بلی کی, بجرنگ بلی کی.
ہنومان جی کی پوتر بھومی کو نمن کرنا یہ بہت بڑا سوبھاگیہ ہے, لیکن درباگیہ دیکھیے جب میں آج ہنومان جی کی پوتر بھومی کو پرنام کرنے کے لیے آیا ہوں, اسی سمے کانگریس پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں بجرنگ بلی کو تانے میں بند کرنے کا نرنے کیا ہے.
جب پردھان منتری اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو پھر پارٹی کے انیہ نیتا یا پروکتاؤں سے اس پرکار کے بیان سامنے آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے.
شیو کمار جی سے بڑی ونمرتا سے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو وہ مکھیہ منتری بن نہیں رہے, اس لیے مندر والا جھوٹا وعدہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. لیکن دوسرا میرا ان سے پرشن ہے کہ کیا ایسا واقعہ کہنے سے پہلے انہوں نے شریمتی وادرا سے چیک کیا؟ اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ 2019 کے لوک سبھا کے امیٹھی کے چناؤ میں نے شریمتی وادرا کو نماز عطا کرتے ہوئے دیکھا تھا سڑک پر. اب ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسلام دھرم میں وشواس کرتے ہیں وہ مورتی کے اپاسک نہیں ہو سکتے, مندر کا نرمان نہیں کر سکتے. تو جب ان کی سروے سروا مکھیا ہی مورتی پوجن کے ورودھ میں ہے, مندر کے ورودھ میں ہے.
یہی وجہ ہے کہ بھارت کے چناؤں میں بھاجپا کی جیت سے بہت سارے لوگ بھارت کی دھرم نرپیکشتا اور بہلتا وادی سماج کے بھوش کے پرتی چنتت نظر آتے ہیں. انہیں لوگوں میں ایک یوگیندر یادو ہے. یوگیندر یادو بھارت میں جانا پہچانا نام ہے. ان کا ماننا ہے کہ کرناٹک کے ودھان سبھا چناؤں کا نتیجہ کیول ایک چناؤ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی گھٹنا اور بہت بڑا سندیش ہے. یوگیندر یادو نے میڈیا کے رویے کی بھی آلوچنا کی.
یہ سب سے مہتوپورن سوال نہیں ہے, کسے شرے ملے کسے نہیں ملے, کون نام. راجنیتی میں ہم لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں. ایک گہرا سوال پوچھنا چاہیے, کیا جیتا کیا ہارا؟ اگر کانگریس جیتی تو کن کارنوں کی وجہ سے جیتی, بی جے پی ہاری کن کارنوں کی وجہ سے ہاری, کیا ہارا کیا ہارا کا پہلا اتر تو بالکل صاف ہے, بی جے پی کا نکما بن ہارا. یہاں کی سرکار بے حد نکمی تھی, کی سرکار کے خلاف غصہ تھا, اینٹی انکمبنسی تھی, لوگ اس کو بھرشٹ مانتے تھے, 40% سرکار مانتے تھے. لوگوں کا غصہ اس پہ آیا, لوک تنتر میں جیسے بھرشٹ سرکار ہارتی ہے ویسے ہی ہارے, और ये बात शुरू से थी। देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ तभी से मुझे लग रहा था कर्नाटका की जनता निकम्मी सरकारों को बर्दाश्त नहीं करती है, इस सरकार ने निकम्मेपन की हद क्रॉस कर दी है, तो ये सरकार तो हारेगी, ऐसा शुरू से लग रहा था। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें हारी हैं, निकम्मापन हारा, भ्रष्टाचार हारा, अहंकार हारा, ये कि सरकार वरकार खराब चलाएंगे कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार कर लेंगे कोई बात नहीं, बस और अपराधियों को प्रमोट करेंगे कोई बात नहीं, बस आखिरी दिनों में आके हिंदू मुसलमान कर देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अहंकार हारा और हिंदू मुसलमान की राजनीति, द्वेष और घृणा की राजनीति, एक समुदाय को दूसरे से भिड़ाने की राजनीति और इस पे घर में आग लगा के रोटी सेकने की राजनीति हारी, और ये देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिए कि सांप्रदायिकता खत्म हो गई, वो बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन कर्नाटका की जनता ने कहा कि ये सवाल मेरा इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल नहीं है, सवाल को थोड़ा साइड में रखो ना, मुझे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मुझे 10 किलो चावल मिलता था वो नहीं मिल रहा, बाबा ये सवाल है, बाकी सब छोड़ो।
योगेंद्र यादव जैसे रुख वाली बात राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ सांसद मनोज झा भी कहते हैं। वो जाने माने राजनेता और स्कॉलर हैं। उनका कहना है कि कर्नाटक की जनता ने यह संदेश दिया है कि चुनाव कम्युनल मुद्दों पर नहीं बल्कि जरूरतों और समाज की अनिवार्यताओं से जुड़े मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक संदेश प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम के लिए भी है, चुनाव मेरी थाली पे होने चाहिए, मेरे रोजगार के मसलों पे होने चाहिए, मेरे पड़ोस में कैसा सौहार्द है इस मसले पे होना चाहिए, विकास कितना इंक्लूसिव हो इस मसले पे होना चाहिए। कहां से कहां हम ले आए चुनाव को, कभी अपेक्षा नहीं की थी कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि ईवीएम में बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। क्या ये भारतीय लोकतंत्र है? मेरी आस्था, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न, सामूहिक और सार्वजनिक जीवन में इस तरह की विसंगतियां बहुत कष्ट पहुंचा रही थी। और आज मैं समझता हूं कि न सिर्फ कांग्रेस के पास एक मौका है सेलिब्रेट करने का, भाजपा के पास एक मौका है इंट्रोस्पेक्ट करने का, अंतरावलोकन करने का, क्योंकि पार्टियों से इतर डेमोक्रेसी का जिंदा रहना जरूरी है। फ्री एंड फेयर जब हम कहते हैं ना, तो उसमें फ्रीडम का विस्तार हो, फेयरनेस का भी विस्तार हो।
मनोज झा की पार्टी भी भारत की उन पार्टियों में है जो धर्मनिरपेक्षता पर बहुत जोर देती हैं और भारत की बहुलतावादी कम्युनिटी को एक सुंदरता और ताकत के रूप में देखती हैं। भारत की छवि बहुलतावाद, विविधता और धर्मनिरपेक्षता बहुत सारे लोगों के लिए बेहद महत्व रखती है। इसीलिए जब भारत की इस छवि पर कोई संकट आता है तो बहुत से लोग चिंतित हो जाते हैं। भारत के जाने माने राजनीतिक टीकाकार और द क्रूक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया किताब के लेखक पराकाला प्रभाकर ने एक इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम आर्थिक मंच पर पूरी तरह अक्षम साबित हुई है।
You see, one thing we should understand is, since the beginning, the Bharatiya Janata Party did not have a coherent, well thought out economic philosophy. This is something we must understand. I'm not talking about any particular individual. But then what is the economic philosophy of Bharatiya Janata Party?
Shri Prabhakar ka yahan tak kehna hai ki Modi keval aarthik kshetr hi nahi balki har kshetr ke liye ayogya hain. Unka kehna hai ki Narendra Modi keval sampradayik aadharon par vibhajan ki sthiti paida karke vote hasil karne ki maharat rakhte hain.
Not only in economics, in most of the things, yes. Except summoning the base divisive communal instincts that probably are somewhere buried deep inside the social psyche of India.
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात। जमीन पर बड़ी मेहनत करने वाले पत्रकार राजीव रंजन ने चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद कर्नाटक में भाजपा की हार का विश्लेषण विस्तार से किया। राजीव रंजन ने कई कारण गिनवा डाले। राजीव रंजन की बात से ये लगता है कि भाजपा अति करने लगी है और सर्वमान्य मुद्दों को भी कम्युनल एंगल देकर विवादित बना देना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का कार्ड खेलने में, आप बताइए, मैसूर से आप बचपन से हमने अपने जमाने में पढ़ा है टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ा और टीपू सुल्तान ऐसा कोई सांप्रदायिक मुसलमान तो इस देश में 500 राज किए हैं तमाम है। आप सारे मुसलमानों को कह दीजिए कि कट्टर मुसलमान था, ये था, वो था, अलग बात है। 500 तो टीपू सुल्तान ने वहां पर राज किया, श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाया, वो इलाका मैसूर का उसकी वजह से जाना जाता है। टीपू सुल्तान से अंग्रेज लड़े, उसके उसके किले को लूट करके ले गए, उसके सारे बेशकीमती सामान लेकर के गए और अपने यहाँ रख दिया, उसका ऑक्शन करते हैं। आपको मालूम विजय माल्या ने उसकी तलवार खरीदी टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान उधर के लिए प्राइड की बात है। तो अब बीजेपी वालों ने अखबार में निकाल दिया इश्तेहार, क्या वो जीतेंगे तो टीपू की जयंती मनाएंगे, वो जीतेंगे तो टीपू के नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। अरे टीपू को आप एकदम से इतिहास में बदल के उसको आप विलेन बनाना चाहते हो। आपने ऐन वक्त कहा कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने नहीं मारा, एक वोक्का लिग्गा ने मारा, क्योंकि आप जानते हो कि उस इलाके में वोक्का लिग्गा और मुस्लिमों का गठबंधन है। आप इस लेवल पर जा रहे हो, आप स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी को कह रही है कि डीके शिवमार मंदिर बनाने की क्या बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को तो हमने सड़क पर नमाज पढ़ते देखा है। आप केरला स्टोरी का प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, इसके बाद सारे बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री हो रही है और बेंगलुरु में उनके पार्टी के अध्यक्ष देखने जा रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो उसको नफरत से भरी फिल्म मानता है, दूसरा तबका ऐसा भी है जो उसको एक सामाजिक समस्या के तौर पर मानता है, और तीसरा तबका है जो उसको एकदम नफरती फिल्म के तौर पर देख रहा है।
भाजपा की बेशक शुरू से यही मंशा रही हो, लेकिन वो पहले अपने कट्टरवादी विचार खुलकर पेश करने में हिचकिचाती थी। यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर वो नेता तलाश करती थी जो सभी दलों और वर्गों में किसी हद तक मान्य हो। टीकाकार पराकाला प्रभाकर कहते हैं कि पहले तो भाजपा ने राजनीतिक हाशिए से खुद को बाहर निकालने के लिए इस तरह के बयान दिए कि असली सेकुलर वही है, और इसके लिए उसने नवीन पटनायक और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की मदद ली ताकि समाज में उसे स्वीकार किया जाए।
The defining point of conversation, political conversation in our country was secularism. Even the BJP used to say, look, we are secular, but genuine secular. Congress is secular, but it is pseudo-secular. All the other parties are pseudo-secular. We are genuinely secular. You see, the point is this, I'm trying to make, is that BJP, what 10 years ago, 15 years ago, did not jettison the term secularism. It was still fighting shy to say that they are Hindutva votaries.
भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों की विचारधारा को लेकर ये बहस हमेशा से रही है कि ये विचारधारा भारतीय संविधान की आत्मा से मेल नहीं खाते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के आरोपों को खुलकर नकारते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे भाजपा इससे पहले राजनीतिक हाशिए से मेन स्ट्रीम में आने के लिए अलग शब्दावली का प्रयोग करती रही है, उसी तरह वो फिलहाल भारतीय संविधान के बारे में भी एहतियात बरतती है, वरना उसकी असली मंशा यही है कि वो संविधान में भी बहुत कुछ बदल देना चाहती है। श्रोताओ, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو آپ نے کاریکرم سنا آج کی بات، جسے پیش کیا احمد عباس نے، اور اب پیش ہے سبھا کا انتم کاریکرم سفل مہیلائیں۔
سفل مہیلائیں۔
دوستو کاریکرم سفل مہیلائیں کی نئی شرنکھلا کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں سید میسم اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو مہیلا سشکتیکرن مدے پر کئی طرح کی چرچائیں اور کئی طرح کی رائے لوگوں دوارا دی جاتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی دیش کی ترقی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اس دیش کی مہیلاؤں کا وکاس صحیح سے کیا جائے۔ وہیں اس وقت مہیلاؤں کے وکاس کے لیے پوری دنیا میں کئی طرح کے کاریا بھی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ مہیلا سشکتیکرن کا مکھیہ لابھ سماج سے جڑا ہوا ہے۔ کسی بھی دیش کو ایک شکتیشالی دیش بنانے کے لیے اس دیش کے لوگوں کو، سماج کی مہیلا کو بھی شکتیشالی بنانے کی ضرورت ہے۔ مہیلاؤں کے وکاس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک پریوار کا وکاس کا کاریہ کر رہے ہیں۔
اگر مہیلا شکشت ہوگی تو وہ اپنے پریوار کو بھی پڑھا لکھا بنانے کی کوشش کرے گی، جس کے چلتے اس دیش کو پڑھے لکھے نوجوان ملیں گے جو کہ دیش کی ترقی میں اپنا یوگدان دے سکیں گے۔ وہیں آج کی دنیا میں ایرانی مہیلاؤں کی پرگتی بہت پربھاوشالی ہے۔ آج ہم ہر دن ان مہیلاؤں کے نام سنتے ہیں جو ایران کا گورو ہیں۔ ایران کے پربھاوشالی مہیلاؤں میں سے ایک مہیلا ہیں نازنین دانشور۔ نازنین کا جنم ورش 1983 میں تہران میں ہوا تھا۔ وہ کم عمر میں ہی دیش کی ارتھ ویوستھا کا ایک مضبوط استمبھ بننے میں سکشم ہو گئیں۔
نازنین دانشور کا جنم ایک شکشت اور سنسکاری پریوار میں ہوا تھا۔ چکتسا کھیتر میں جانے کے لیے ان کے پریوار کی اچھا کے باوجود انہوں نے کمپیوٹر کھیتر میں اپنی پڑھائی پوری کی، اور اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے وینا میں یونیورسل ٹیکنیکل یونیورسٹی گئیں، لیکن گھر سے دور رہنے کی وجہ سے ان کو ہونے والے سمسیاؤں نے انہیں ودیش میں رہنے نہیں دیا۔ وینا سے لوٹنے کے بعد انہیں امیر کبیر وشو ودیالے کے آئی ٹی انجینئرنگ وبھاگ میں ایڈمیشن مل گیا۔ جب وہ ودیش میں تھیں تو انہوں نے بریٹن میں انٹرنیٹ ویب سائٹوں اور انٹرنیٹ پر پیسہ بنانے سے سمبندھت کئی ادھارن دیکھے تھے۔ ایران لوٹنے کے بعد ان کی ماں دوارا کی جانے والی خریداری کو دیکھ کر ان کے دماغ میں انٹرنیٹ سپر مارکیٹ شروع کرنے کا آئیڈیا آتا ہے۔
ورش 2009 میں میدانک نام کی ویب سائٹ سے سپر مارکیٹ کی انہوں نے شروعات کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے لوک پریا ہو گئی۔ لیکن بعد میں تہران میں سیوائیں، یاتایات اور پریوہن سمسیاؤں کو لے کر یوجنا کی کمی کے کارن وفل ہو گئی۔ لیکن نازنین اس اسفلتا سے ایک بڑا سبق سیکھتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے پریاپت پرشکشن یا انوبھو پراپت کرنا ضروری ہے۔ اس سمبندھ میں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ وہی موقع تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں ویاپار کی اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتی، اور یہ ایک پروگرامر کا بھرم تھا جو سوچتی ہے کہ وہ اپنے دوارا لکھے گئے ہر کاریکرم کو نینترت اور پربندھت کر سکتی ہے۔
ان سب کے باوجود دانشور نراش نہیں ہوئی اور انہوں نے امید کے دامن کو تھامے رکھا۔ وشو ودیالے سے سناتک ہونے کے بعد وہ اس سنستھان میں پڑھانے لگی تھی کہ جہاں سے انہوں نے پڑھائی کی تھی۔ کچھ سمے بعد وہ ایک کمپنی میں بگنر پروگرامر کے روپ میں کام کرنے لگتی ہیں۔ یہ کمپنی انہیں ایک سال کے اسپیشل کورس کے لیے بریٹن بھیجتی ہیں۔ وہ خود کو بریٹن میں اچھی طرح سے تیار کرتی ہیں، اس حد تک کہ انہیں مکھیہ پریوجنا پربندھک کے روپ میں چنا جاتا ہے۔ پھر وہ جرمنی چلی جاتی ہے۔ وہ جرمنی میں گروپ آن کے تکنیکی وبھاگ میں بھی کام کرتی ہیں، اور جرمنی میں ای کامرس کمپنی کے 3 مہینے کا کورس پورا کرنے کے بعد وہ ایران واپس لوٹ آتی ہے۔
سفل مہیلائیں۔
नाजनीन, दानेश्वर ने अपनी बहन और पिता के साथ आधिकारिक तौर पर 50 मिलियन तुमान की शुरुआती पूंजी के साथ अपना काम शुरू किया और डिस्काउंट वेबसाइट को लॉन्च किया। तखफीफान पहली ईरानी समूह शॉपिंग और डिस्काउंट साइट है जिसे 2011 में श्रीमती नाजनीन दानिश्वर द्वारा लॉन्च किया गया। तखफीफान दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने का एक मंच है जिसमें सभी प्रकार के रेस्तरां, मनोरंजन केंद्र और स्वास्थ्य और शैक्षिक केंद्र, सभी प्रकार के सामानों और विभिन्न उत्पादन और यात्रा सहित अन्य सेवाएं मौजूद हैं।
उत्साह की अच्छी भावना वो अवधारणा है जो तखफीफान ग्राहक को अपनी साइट पर पेश करना चाहता है। इस साइट के ग्राहक न केवल खरीदार हैं बल्कि विक्रेता भी इस प्रणाली में व्यापार भागीदारों के रूप में बनाए गए मूल्यों से लाभान्वित होते हैं। वर्तमान समय में तखफीफान को ईरान में पहली और सबसे बड़ी समूह डिस्काउंट वेबसाइट और व्यापार मालिकों के लिए विज्ञापन की नवीनतम विधि के रूप में जाना जाता है और ये ई कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे सफल वेबसाइटों में से एक है। तखफीफान को ईरान वेब फेस्टिवल के चौथे संस्करण में उद्यमिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साइट के रूप में पेश किया गया और फेस्टिवल की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली।
नाजनीन का मानना है कि इस व्यवसाय में सफलता का रहस्य सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं है, इस कार्य की ताकत इस व्यवसाय के प्रकार और मॉडल से पूरी तरह परिचित होना है। यदि समस्या केवल साइट बनाने और उसे लॉन्च करने की है तो कोई भी कंपनी को शुल्क देकर साइट डिजाइन करवा सकता है। उनका यह भी मानना है कि तकनीकी मुद्दों की तुलना में व्यावसायिक संरचना की सही समझ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उनका मानना है कि तकनीकी मुद्दे शायद इस मुद्दे का 10% हैं, शेष 90% व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक संचालन है।
डिस्काउंट की वेबसाइट में तखफीफान ईरान वेब फेस्टिवल में उद्यमिता और व्यवसाय के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साइट की विजेता है और सर्वश्रेष्ठ समूह डिस्काउंट साइटों में से एक है। दो शब्दों तखफीफ और दूसरे शब्द ऑन से मिलकर इस साइट का नाम रखा है तखफीफ, जो कि फारसी शब्द है, इसका अर्थ है डिस्काउंट, और ऑन अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है चल रहा है। वास्तव में साइट के नाम का अर्थ है कि छूट सक्रिय है और इसका उपयोग किया जा सकता है। दानिश्वर को तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 32वीं बैठक में सर्वश्रेष्ठ युवा उद्यमी के रूप में चुना गया था।
अपने इस अनुभव के बारे में वो कहती हैं कि 28 देशों के सफल व्यवसायी थे और मैंने कभी एक जगह इतने सफल लोगों को नहीं देखा था। एक फूड सेक्टर का टॉप ब्रांड था, एक सीमेंट सेक्टर का टॉप ब्रांड था। आपको ये बताना दिलचस्प है कि जब मैं एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक टैक्सी से जा रही थी तो टैक्सी ड्राइवर ने जब देखा कि मैं ईरान से आ रही हूँ तो उसने कहा कि आपने हाल ही में अपने देश में अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि ईरान के बारे में इन्हें इतनी भी जानकारी नहीं है। हमारे पड़ोसी देश के लोग भी, जहां भारी संख्या में ईरानी लोग रहते हैं और वहां की यात्रा भी करते हैं, उनकी नज़र में हमारी छवि ऐसी बनी हुई है। जब मैंने इन लोगों को देखा तो मुझे लगा कि मेरी उपस्थिति का मुख्य कारण और उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने देश की गलत छवि को बदलना है।
नाजनीन कहते हैं कि ऐसे समारोह में मेरी उपस्थिति और मेरा चयन और जीत निश्चित रूप से एक व्यक्तिगत सम्मान नहीं है और एक विशिष्ट व्यवसाय से संबंधित है, बल्कि मेरी राय में ये मेरे देश और मेरे समाज के प्रति गलत विचारों को बदल सकता है। वो उस प्रेरणा के बारे में भी बात करती हैं जो इस पुरस्कार से अन्य स्टार्टअप्स को मिली और कहती है कि दिलचस्प बात यह है कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद मेरे पास 200 से अधिक निजी संदेश आए जो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। मैं इन सभी लोगों, पुरुष या महिला को एक संदेश देना चाहती हूं कि केवल एक चीज़ मायने रखती है और वो है प्रयास करना। कभी भी अपनी कोशिशों को रोके नहीं। कभी भी थोड़ी सी कोशिश में इंसान नतीजा हासिल कर लेता है तो कभी कभी ज्यादा प्रयास करना पड़ता है और नतीजा मिलने में समय भी लगता है।
दानिश्वर के बारे में ये जानना दिलचस्प है कि इस सफल उद्यमी के जीवन का आदर्श नारा कुछ और नहीं बल्कि बदलाव के लिए कोशिशों को जारी रखना उनका आदर्श है। जैसा कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस संबंध में कहा है कि आपको उस बदलाव का अवतार होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अंत में दानिश्वर एक सिफारिश करते हुए कहती हैं कि कई बार मैंने तख़फ़ीफ़ान के कर्मचारियों से सीखने की अपनी कोशिशों को जारी रखा है। मैं लड़कियों से हमेशा कहती हूं कि वो किसी कोने का हिस्सा ना बने बल्कि बीच मैदान में रहें। मैं हमेशा उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने और विकास की तलाश करने के लिए कहती हूं, क्योंकि अगर तख़फ़ीफ़ान को अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है तो ऐसे कर्मचारियों का होना ज़रूरी है जो बदलाव और विकास के लिए हमेशा कोशिशें करते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाज़त दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। दोस्तों, आपने अभी कार्यक्रम सुना सफल महिलाएं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें लिख भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारे कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं parstoday.ir/HI। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Oh,